بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پہ۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahartv.ir۔ اور انداز جہاں میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے افغانستان میں بدامنی اور کابل واشنگٹن اختلاف۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ناظرین، افغانستان میں بدامنی اور امریکہ و طالبان کے حملوں کے تعلق سے واشنگٹن پر افغان حکومت کے اعتراضات اور تنقید بڑھ گئی ہے۔ افغان صدر نے متعدد بار اپنی یہ بات دہرائی ہے کہ نیٹو اور طالبان کے حملوں میں افغان عوام ایسے عالم میں مارے جا رہے ہیں کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان ہر روز مذاکرات ہوتے ہیں۔ افغان صدر کا کہنا ہے کہ طالبان افغانستان کے اندر اس لیے دہشت گردانہ کاروائی اور بم کے دھماکے کرتے ہیں کہ امریکہ کو یہاں فوج باقی رکھنے کا بہانہ دستیاب ہو۔ افغان حکومت نے اپنے ایک تازہ بیان میں افغانستان کے اندر امریکہ اور نیٹو کی فوجی کاروائیوں کو احمقانہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ افغان عوام یہ جاننا چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر دہشت گردی مخالف جنگ کا ہدف کیا ہے۔ افغان حکومت کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کی پناہ گاہیں افغانستان سے باہر ہیں، پھر دہشت گردی مخالف جنگ افغانستان کے اندر کیوں لڑی جا رہی ہے؟ امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات کے الزام کی واشنگٹن اور طالبان دونوں نے تردید کی ہے، لیکن کابل حکومت نے ان کے تردیدی بیانات کو مسترد کر دیا ہے اور اپنے اس موقف پر قائم ہے کہ طالبان اور امریکہ کے درمیان رابطہ موجود ہے اور دونوں مل کے افغان عوام کا قتل عام کر رہے ہیں اور افغانستان کی بنیادیں کمزور کر رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ کابل اور واشنگٹن کے درمیان کشیدگی بڑھنے کے اسباب کیا ہیں، امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات کی حقیقت کیا ہے، امریکہ اور طالبان کے درمیان رابطہ ہے یا نہیں، اگر ہے تو طالبان کے خلاف جنگ کیا معنی رکھتی ہے، طالبان اور امریکہ کے درمیان رشتوں کی نوعیت کیا ہے، کیا واقعی افغانستان پر حملے اور یہاں فوجی تعینات کرنے کا مقصد دہشت گردی کے خلاف جنگ تھا؟ اس موضوع پر گفتگو کے لیے آج ہم نے اپنے اسلام آباد اسٹوڈیو میں آنے کی دعوت دی ہے پاکستان کے ممتاز دانشور اور تجزیہ نگار ڈاکٹر قندیل عباس کو۔ دہلی اسٹوڈیو سے اس مذاکرے میں حصہ لیں گے ہندوستانی کمیونسٹ پارٹی کے مرکزی رہنما اتل کمار انجان، اور ٹیلی فون لائن کے ذریعے اس مباحثے میں شریک کیا جائے گا بیلجیم میں مقیم پاکستان کے سینئر سیاستداں اور تجزیہ نگار محمد فیصل خان صاحب کو۔ لیکن پہلے اس تعلق سے ہماری رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔
افغانستان کے صدر حامد کرزئی نے کہا ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان قطر میں روزانہ کی بنیاد پر مذاکرات انجام پا رہے ہیں۔ حامد کرزئی کے اس بیان کی طالبان اور امریکہ نے فوری طور پر تردید کی۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ حامد کرزئی کے بیان میں سچائی نہیں ہے، اور ایک امریکی جنرل نے بیان دیا کہ ہم نے 12 سال جنگ کی اور اپنے کمانڈروں اور فوجیوں کی جانیں قربان کی، لیکن آج ہمارے سلسلے میں اس طرح کی بدگمانی پائی جاتی ہے۔ طالبان اور امریکہ لاکھ تردید کریں لیکن یہ مسلمہ حقیقت ہے اور اس سے میڈیا اور سیاسی حلقے واقف بھی ہیں کہ قطر میں طالبان کا نمائندہ دفتر قائم ہو چکا ہے اور یہ دفتر امریکہ سے مذاکرات کے غرض سے قائم کیا گیا تھا اور فریقین نے مذاکرات انجام بھی دیے تھے، تاہم اب وہ اس سے انکاری ہیں۔ امریکہ نے 7 اکتوبر 2001 کو افغانستان پر حملہ شروع کیا اور اس حملے کا بہانہ نیو یارک اور واشنگٹن ڈی سی میں طیاروں سے کیے جانے والے حملوں کو قرار دیا گیا۔ حملے کا آغاز برطانیہ اور امریکہ نے کیا تھا، جبکہ فرانس، جرمنی، آسٹریلیا اور کینیڈا جیسے ملکوں نے لاجسٹک سپورٹ فراہم کی تھی۔ امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر اپنا یہ فوجی مشن شروع کیا تھا۔ تقریباً 12 سال کا عرصہ ہو رہا ہے اور افغانستان کی حالت یہ ہے کہ اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ اب اسے دہشت گردی سے نجات مل چکی ہے اور طالبان اس ملک میں کمزور پڑ گئے ہیں، بلکہ تجزیہ نگاروں کی بڑی تعداد کا کہنا ہے کہ طالبان کمزور نہیں ہوئے۔ اقوام متحدہ میں ہندوستان کے کارگزار سفیر منجیو پوری نے بھی سلامتی کونسل سے کہا ہے کہ عالمی برادری کی مشترکہ کوششوں کے باوجود جنگ زدہ افغانستان میں دہشت گردی کا خطرہ قائم ہے اور القاعدہ، طالبان، لشکر طیبہ اور دیگر انتہا پسند تنظیمیں افغانستان کی حدود کے اندر محفوظ ٹھکانوں سے اپنی سرگرمیاں انجام دے رہی ہیں۔ خود افغانستان کے عوام اور حکومت کا بھی یہی کہنا ہے کہ غیر ملکی افواج نے دہشت گردی میں کوئی کمی نہیں کی ہے، بلکہ ان کی وجہ سے دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے۔ سیاسی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ دہشت گردی میں کمی کے بجائے اضافے کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کو اپنے دعوے کے برخلاف دہشت گردی کے خلاف جنگ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور وہ دہشت گرد تنظیموں کا قلا قمع کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، بلکہ اپنے مقاصد کے لیے دہشت گرد تنظیموں کو استعمال بھی کرتا ہے۔ چنانچہ جس القاعدہ کا خاتمہ کرنے کے لیے امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تھا، آج اسی القاعدہ کی بھرپور مالیاتی و اسلحہ جاتی مدد کر کے وہ شام میں بشار اسد کی حکومت اور ملک کے عوام کے خلاف اس تنظیم کو استعمال کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ افغانستان میں حکومت اور عوام اب غیر ملکی افواج کے چنگل سے ملک کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں۔ افغانستان کے صدر کے ترجمان ایمل فیضی نے اپنے ملک پر امریکہ کے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان پر واشنگٹن کے حملے بے مقصد اور غیر معقول ہیں۔ خود افغان صدر حامد کرزئی اپنے متعدد بیانوں میں واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ امریکہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے افغانستان نہیں آیا ہے، بلکہ اس کے مقاصد کچھ اور ہیں۔ اس ضمن میں افغان صدر حامد کرزئی نے جن مسائل کی جانب اشارہ کیا ہے، ان میں سے ایک افغانستان میں موجود رہنے کی امریکہ کی کوشش ہے۔ حامد کرزئی نے صوبہ ہلمند کے شہر لشکرگاہ میں کہا کہ اس صوبے میں بے تحاشا ایسی معدنیات موجود ہیں جن کو ابھی تک دریافت نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے خلائی ادارے کی تحقیقات سے بھی ثابت ہو گیا ہے کہ افغانستان کے صوبے ہلمند میں بہت زیادہ معدنیات موجود ہیں اور امریکی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ افغان عوام کو پتہ چل چکا ہے کہ غیر ملکی فوجی افغانستان میں اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ افغانستان کے صدر حامد کرزئی نے اسی وجہ سے افغانستان میں دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے امریکہ اور نیٹو کے دعوے کو جھوٹ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ صوبہ ہلمند میں زیر زمین ذخائر 300 ٹریلین ڈالر کی مالیت کے ہیں اور امریکیوں نے افغانستان کی حکومت سے مطالبہ بھی کیا ہے کہ وہ بعض معدنیات کو نکالنے کا کام ان کے سپرد کر دے۔ ان حقائق کے مد نظر ایسا لگتا ہے کہ امریکہ افغانستان میں اپنے مستقل ٹھکانے چاہتا ہے تاکہ یہاں موجود معدنیات کو جہاں تک ممکن ہو لوٹ سکے اور ہمسایہ ممالک کے لیے سیکیورٹی کی مشکلات کھڑی کرتا رہے۔ منشیات کی پیداوار میں اضافہ بھی امریکہ کا ایک اہم پروجیکٹ ہے جس پر وہ وسیع پیمانے پر عمل کر رہا ہے۔ ان مقاصد کی تکمیل کے لیے امریکہ کو طالبان کی مدد کی بھی ضرورت ہے اور طالبان اپنی شرطوں پر امریکہ کی مدد بھی کر رہے ہیں۔ لہذا افغان صدر کا یہ بیان کہ قطر میں امریکہ اور طالبان کے درمیان روزانہ کی بنیاد پر مذاکرات ہو رہے ہیں حقیقت کے قریب لگتا ہے۔
ناظرین، افغانستان کے تعلق سے واشنگٹن اور کابل کے درمیان بڑھتے ہوئے اختلافات کے بارے میں ہماری رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو، جہاں پاکستان کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر قندیل عباس صاحب موجود ہیں، ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ قندیل عباس صاحب، آداب عرض ہے۔ جی قندیل عباس صاحب، کابل اور واشنگٹن کے درمیان موجودہ کشیدگی کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟
دیکھیے، یہ کشیدگی ظاہر ہے کوئی نئی نہیں ہے اور پچھلے ایک دہائی سے جو کچھ افغانستان میں ہو رہا ہے اس کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور ہم بھی اس کو بڑے قریب سے اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچانک وہ کون سی بات ہو گئی کہ باقی سارے گروپ تو افغانستان میں امریکہ کے خلاف بولتے ہی تھے، अब हामिद करज़ई साहब भी उनके ख़िलाफ़ बोलना शुरू हो गए हैं और उनको भी अमेरिका की जो अफ़गानिस्तान में वो मौजूदगी है वो उनको बुरी लगना शुरू हो गई है। इस वक्त जो हालिया सिचुएशन है इसमें दो अहम वाक़यात हुए हैं। एक मैदान वर्दक में, जो मैदान वर्दक अफ़गानिस्तान का एक अहम शहर है काबुल के नज़दीक वाक़ है, वहाँ पर अमेरिका की जो स्पेशल फोर्सेज हैं उन्होंने कुछ ऑपरेशंस किए और उन ऑपरेशंस के दौरान उनकी जो वहाँ की आम आवाम है उनके साथ कुछ ऐसी बाज़ोकात तो महसूस किया गया कि आवाम की तज़हीक की उन्होंने, तोहीन की, और जिसकी वजह से लोग सड़कों पर निकल आए, उनके खिलाफ़ प्रोटेस्ट किया और अपनी हुकूमत के खिलाफ भी प्रोटेस्ट किया कि ये आवाम की तज़हीक क्यों हो रही है। दूसरी तरफ बगराम का जो जेल है इसमें भी वहाँ मौजूद कैदियों के साथ जो सख्त रवैया है, तशद्दुद किया जा रहा है वहाँ पर कैदियों पर। इन दोनों वाक़यात में हामिद करज़ई साहब ने एक तो ये कहा था कि अमेरिकन फोर्सेस जो है वो फौरी तौर पर मैदान वर्दिक से निकल जाएं यहाँ से बाहर और इसका कंट्रोल जो है वो अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले कर दें। उन्होंने 2 हफ्ते की डेडलाइन दे दी थी, लेकिन 2 हफ्ते के दौरान जो नेटो के सेक्रेटरी जनरल थे उनके मुलाकात भी हुई हामिद करज़ई के साथ, और इस मुलाकात के बावजूद उस डेडलाइन के अंदर उन्होंने वर्दक का कंट्रोल जो है वो अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को नहीं दिया। और ये डेडलाइन ख़त्म होने के बाद वहाँ पर काफ़ी मुजाहरे भी हुए, लेकिन जो लास्ट स्टेटमेंट आई है रासमुसन की, जो सेक्रेटरी जनरल है नेटो के, उन्होंने कहा कि हमारी गवर्नमेंट के साथ यानी हामिद करज़ई के साथ अंडरस्टैंडिंग हो गई है और हम ग्रेजुअली ये कंट्रोल अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले कर देंगे। इसी तरह बगराम के बारे में हामिद करज़ई साहब ने कहा था कि अगर फौरी तौर पर इसका कंट्रोल अफगान फोर्सेस को ना दिया तो वो एकतरफा तौर पर कार्रवाई शुरू कर देंगे इसका कंट्रोल लेने के लिए। ये दो वाक़यात के बाद जो स्टेटमेंट साथ हमारे सामने आई है कि जो तालिबान और अमेरिका के मुज़ाकरात हैं, उन्होंने यूरोपीय ममालिक और खलीज फ़ारस के बाज़ मुल्कों का जिक्र किया और इसमें ख़ास तौर पर खलीज फ़ारस में तो कतर हब बना हुआ है इन डायलॉग्स का, और दूसरा फ्रांस में ये डायलॉग हुए जहाँ पर खुद करज़ई साहब भी गए और वहाँ पर ऐसी मुलाकातें हुई कुछ जहाँ पे तालिबान के साथ। लेकिन अब करज़ई साहब ये कहते हैं कि वहाँ तो वो हमारे साथ बैठ के मुज़ाकरात करते हैं लेकिन काबुल में और कंधार में और मुख्तलिफ शहरों में वो हमें मार रहे हैं। ये चीज़ें देखकर जो मेरी अपनी राय है उसमें ये है कि अभी जो एंड गेम सामने आ रही है 2014 में यानी 2014 में जो अमेरिका ने अनाउंस किया हुआ है, अब पहले तो बहुत ज़्यादा डाउट्स थे कि अमेरिका वहाँ से निकल जाएगा या वहाँ रहेगा, लेकिन एक बात ज़रूर सामने आ रही है कि करज़ई साहब ने भी कहा है कि अमेरिकन यहाँ जाने के लिए नहीं आए बल्कि उन्होंने रहना है, और उन्होंने ये भी रियलाइज़ किया और अमेरिकन को ख़िताब करते हुए करज़ई साहब ने ये भी कहा कि हमें पता है कि आपके इस खत्ते में मफादात हैं, हम उसको रियलाइज़ करते हैं, लेकिन जब हम आपके उन मफादात की रेस्पेक्ट करते हैं तो आप हमारे मफादात की भी रेस्पेक्ट करें। अब ये सारे बयान तो ये सारी सिचुएशन से नज़र ये आ रहा है कि करज़ई साहब अपनी जस्ट फेस सेविंग के लिए एंटी अमेरिकन स्टांस ले रहे हैं, और वो करज़ई साहब जो पिछले एक दहाई से अमेरिका की सपोर्ट कर रहे थे, हर बुरे काम को भी वो अच्छा बनाकर पेश कर रहे थे, अब अचानक वो देख रहे हैं कि अगर नियर फ्यूचर में अगर कोई पॉलिटिकल चेंज आती है तो इस चेंज के अंदर अफगानिस्तान के अवाम की जो अक्सरियत है उनके अंदर अमेरिका के बारे में सख्त नाराज़गी पाई जाती है, और अगर किसी को वहाँ पर इलेक्शन होते हैं और आम इंतखाबात होते हैं तो वही कुव्वतें सामने आएंगी जिनको अवाम की हमायत मिलेगी। तो करज़ई साहब को ये पता है कि उनको एज एक सेकुलर एलिमेंट इंडक्ट किया गया था इस सिस्टम के अंदर, उनका अपना कोई ज़ाती बहुत बड़ा कोई सियासी बैकग्राउंड भी नहीं है, ना जिहाद के हवाले से जो सोवियत यूनियन के इन्वेजन के दौरान वहाँ पर ग्रुप्स उभर कर सामने आए थे, ना उनसे कोई ताल्लुक है। तो ऐसी सिचुएशन में वो अपनी एक शनाख्त बनाने के लिए, अपनी एक पहचान बनाने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, अगरचे स्टेटमेंट्स गलत नहीं हैं। पहले वो इन्हीं चीज़ों को जस्टिफाई करते थे और कहते थे कि जो कुछ हो रहा है वो ठीक हो रहा है, लेकिन अब अपने आप को आवाम के साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है। लेकिन देखिए पिछले कई सालों में हमने देखा कभी बारात पे अटैक हो जाता था, कभी जनाजे के जुलूस पे अटैक हो जाता था, कभी आम लोगों पर, और इतने लोग मरते थे, कभी इस तरह के सख्त स्टेटमेंट्स नहीं आए। लेकिन इस स्टेज पर जो एंड गेम की तरफ हम जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि करज़ई साहब की सिर्फ फेस सेविंग की एक कोशिश है।
बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया कंदिल अब्बास साहब, और हमारे दिल्ली स्टूडियो में हिंदुस्तानी कम्युनिस्ट पार्टी के मरकजी रहनुमा अतुल कुमार अंजान साहब मौजूद हैं। अंजान साहब आधा और से
आदाब शराफत भाई
जी। अंजान साहब, अब जबकि 2014 करीब आ रहा है और अमेरिका और नेटो की अफवाज को यहां से जाना है जिसका उन्होंने ऐलान कर रखा है, इस मौके पर काबुल और वॉशिंगटन के दरमियान बयानबाजी और इख्तलाफ बढ़ गया है, आपकी नजर में इसकी वजह क्या हो सकती है?
देखिए, 2014 में अमेरिका और नेटो की फोर्सेज अफगानिस्तान छोड़ देंगी, इसके ऊपर अभी बहुत पुख्तगी के साथ कोई बात नहीं कही जा सकती
जी,
क्योंकि अमेरिका जहां जाता है वहां पहले तो देर से आता है और जब आता है तो फिर जाता नहीं है। और अभी जरूर इस बात को प्रेसिडेंट ओबामा ने अपने इलेक्शन के दौरान ये कहा था कि बहुत जल्दी हम अपनी फौजों को वहां से अफगानिस्तान से वापस लाएंगे, और नाटो के भी तमाम मुल्कों ने इस बात को कहा है, और यूरोपियन यूनियन में भी कई तरह की बात हुई कि आखिर कब तक हम वहां रहेंगे और नाटो की फोर्सेज रहेंगी। लेकिन आप इस बात को सोच कर रखिए कि आज जिस तरह की इक्तसादी मामले में गोरान पूरे नाटो के मुल्कों में है, पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन के मुल्कों में है, ऐसे दौर में क्या अफगानिस्तान से नेटो का वापसी, और जहां पर उन्होंने अब तक कम से कम कोई 30 खरब डॉलर खर्च किए हों और जिसमें करीब करीब 60 खरब डॉलर उनके और दूसरे कामों में खर्च हुए हों, क्या वो आसानी से जाएंगे? और अगर जा रहे हैं तो किस हालात में जा रहे हैं? पाकिस्तान को जिस तरह की मदद अमेरिका ने किया है और जिस तरीके से वहां पर उस मदद के खिलाफ आज आवाम उठ खड़ी हुई है, इलेक्शन वहां होने वाले हैं, उसके रिजल्ट बताएंगे कि जो पीपल्स पार्टी है उसकी क्या हालत है, और वहां के अंदर जो एक बड़ा हिस्सा तालिबानी नेतृत्व के साथ, तालिबानी लीडरशिप के साथ उसकी एक तरीके से दोस्ती है, वो किस तरह का नुमाया रोल पाकिस्तान के पार्लियामेंट के इलेक्शन में करने जा रहे हैं, ये देखने की जरूरत है। और आप इस बात को गौर कीजिए कि अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन को हटाने के नाम पर आने के बाद क्या बर्बादी हुई है, कितने लोग मारे गए, और उससे भी ज्यादा बात आप ये देखिए कि इस पूरे दौर के अंदर वेस्ट एशिया के अंदर अमरीकी सियासत कितनी मजबूती से अफगानिस्तान में बैठ के नाटो ने चलाई है और अमेरिका ने चलाई है कि उन्होंने इराक को तबाह किया, आज उसके बाद जो है उन्होंने लीबिया तबाह किया, उसके बाद और तमाम ममालिक तबाह किए, और आज अमरीकी गिरफ्त पूरे के पूरे उस वेस्ट एशिया के अंदर इतनी मजबूत हो गई है, कहीं वो तहरीक अवामी तहरीक के नाम पर खड़ी होती है लेकिन बाद में वो अमरीका की गिरफ्त में पहुंच जाती है, और आज जो सीरिया में हो रहा है उसको भी देखने की जरूरत है। लेकिन क्या हुआ, क्या इराक में धमाके बंद हो गए? क्या इराक में कितने लोगों की मौतें जो हो रही हैं बंद हो गए? अरे लोग तो अब क्या हो रहा है कि लोग मस्जिदों में नमाज अदा कर रहे हैं, रमजान के महीने में पाकिस्तान में 22 बम ब्लास्ट होकर के 286 लोग हलाक कर दिए जाते हैं, ये वो सब अमरीकी खेल का हिस्सा है जिसने पूरे इलाके में एक कोहराम बरपा कर दिया है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। आज उसको रोकने और बोलने वाले लोगों की तादाद घट गई है, और अब वो बात अलग है कि अपने ही कॉन्ट्रडिक्शन, अपनी ही बेदारी के चलते उसके मुल्क में जो सियासी गोरान के साथ साथ जो इक्तिसादी हालात उनके खराब हुए हैं, आज उसकी वो भरपाई करना चाहते हैं। और ठीक कहा हमारे वो पाकिस्तान के दोस्त ने कि, और आपकी रिपोर्ट में पहले दिखाया गया कि $3 ट्रिलियन आज वो अफगानिस्तान से बटोरना चाहते हैं। अमेरिका ने जो पैसे और नाटो ने जो पैसे लगाए अफगानिस्तान के अंदर, वो बटोर करके उसका दुगना और तिगना इकट्ठा करना चाहते हैं। आज सवाल है, दुनिया पूछना चाहती है अफगानिस्तान के मामले में अमेरिका को कि आप तो वहां अमन कायम करने गए थे, ये कैसा अमन है कि जहां लोग बेतहाशा लोग मारे जा रहे हैं, ये कैसा अमन है कि जनाजे पर हमले हो रहे हैं, ये कैसा अमन आपने कायम किया है कि शादी के मौके पर लोग खाना खा रहे हैं वहां बम धमाके हो रहे हैं, और अब इस अमन के मामले में आप जिसके ऊपर सबसे ज्यादा हाथ रखे हुए थे, जो आपकी स्कूल का पढ़ा हुआ तालिबिल्म था, वो करजाई साहब कहां चले गए? आज क्यों करजाई साहब दूसरी किस्म की जुबान बोल रहे हैं? मैं समझता हूं कि देर से ही सही, लेकिन आज अमेरिका की वेस्ट एशिया में जो पॉलिसी है और अफगानिस्तान को लेकर के वो जिस तरीके की दादागिरी कायम कर रहे हैं पूरे इलाके में, लेकिन अफगानिस्तान में जो फेल हो रहे हैं उससे कहीं वो बचना चाहते हैं। और मैं आपसे अगर ये कहूं कि उस इलाके के अंदर आज क्या हो रहा है, अभी प्रेसिडेंट ओबामा साहब 3 दिन के दौरे पर इसराइल में हैं, नेतन्याहू की नई सरकार है उसके साथ खड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि नेतन्याहू को और इसराइल की सरकार को पूरी मदद करेंगे। इसराइल पैलेस्टाइन पर हमला करता जा रहा है, बराबर गाजा पट्टी पर हमला करता जा रहा है, बच्चों को मार रहा है, सारे इंटरनेशनल लॉ जितने हैं यूनाइटेड नेशन के तमाम फैसलों को दरकिनार कर रहा है इसराइल, और ओबामा साहब वहां पहुंच करके उसकी मजम्मत नहीं कर रहे हैं बल्कि उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। ये क्या कहना चाहता है? और दूसरी तरफ वो बार बार अब वो कह रहे हैं कि हम दोनों कोरिया के सवाल पर, हम नॉर्थ कोरिया के खिलाफ साउथ कोरिया के साथ में खड़े होकर के हम जो है न्यूक्लियाई हथियारों का भी इस्तेमाल करेंगे। आप न्यूक्लियाई हथियारों का इस्तेमाल करेंगे और एक जिसको कहते हैं कि आवाम की बेहतरी के लिए एक पीसफुल तरीके से, ईरान अगर अपने न्यूक्लियाई हथियारों का नहीं बल्कि न्यूक्लियाई प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करना चाहता है अपनी मेडिकल साइंस को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी सोसाइटी के अंदर न्यूक्लियाई पावर को ले जाने के लिए, तो आप कह रहे हैं कि उसके ऊपर सब तरह के चारों तरफ से उसकी घेराबंदी की जाए और उसके ऊपर इंबार्गो लगाया जाए। और हिंदुस्तान जैसे मुल्क में भी आज उस इंबार्गो का असर दिखाई दे रहा है अमरीकी कयादत और अमरीकी प्रेशर को कि आज हम ईरान से करीब 23% जो तेल लेते थे, 23% का तेल का घाटा ईरान से तेल लेना हमने अमरीकी दबाव में कम कर दिया। तो सिर्फ अफगानिस्तान का सवाल नहीं है, नाटो और अमेरिका की जो पॉलिटिक्स है, नाटो और अमेरिका की जो चाल है और नाटो और अमेरिका की जो पहल है, एक तरफ जंग के तौर पर बात उनकी अमन की है लेकिन अमन का कोई प्रोग्राम नहीं है, बल्कि अफगानिस्तान के अंदर वो नए तरीके से लोगों को बढ़ा रहे हैं। अगर तालिबान इतना खराब था और तालिबान के खिलाफ आपने लड़ाई शुरू की तो आज तालिबान से बात क्यों हो रही है? आज अमेरिका का यार क्यों बन गया तालिबान और तालिबान के साथ अमेरिका की दोस्ती क्यों है? क्योंकि तालिबान के तमाम मामले पाकिस्तान से भी जुड़े हैं और तालिबान की जो पहले दिनों पिछले दिनों जो उनकी कारकर्दगी रही है उससे हिंदुस्तान के सवाल पर भी कई तरह के खतरे होते हैं। इसलिए आज पाकिस्तान की सियासत में तालिबान का जो रोल है और जो तालिबान सोसाइटी के अंदर वहां एक अलग किस्म की अफरा तफरी पैदा कर रहा है, और अफगानिस्तान में जिस तरीके से एक तरफ अमेरिका पाकिस्तान का दोस्त भी बनता है, $3 अरब की भी उन्होंने पेशकश भी कर दी है, तमाम हथियार भी दे रहे हैं, और दूसरी तरफ आप तालिबान से पाकिस्तान की सरकार की का जंग भी हो रहा है और आप तालिबान के साथ हाथ मिला रहे हैं। दुनिया अमेरिका की इस सियासत को देख रहा है और समझ रहा है कि साम्राज्य की साजिशें कितनी गहरी होती हैं, ये देख रहे हैं। और मैं ये समझता हूं कि सारी घेरेबंदी के साथ कहीं ना कहीं पूरी पॉलिटिक्स वेस्ट एशिया को अपनी आगोश में लेने की है और उनको न्यूट्रलाइज करके, उनको खामोश करके, उनको तमाशबीन बना करके वो एक नई लड़ाई ईरान के खित्ते में लड़ना चाहता है।
बहुत बहुत शुक्रिया अंजान साहब। और नाज़रीन, टेलीफोन लाइन के जरिए हमारा राबिता बरकरार हुआ है बेल्जियम में मुकीम पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान और तजिया निगार मोहम्मद फैसल खान साहब से। खान साहब आदाब अर्ज है।
वालेकुम अस्सलाम जनाब मिराज शरीफ
जी। फैसल खान साहब, अफगानिस्तान के ताल्लुक से अमेरिका की मौजूदा पॉलिसी के बारे में आपका तजिया क्या है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान तो कुजा इस वक्त पूरी वेस्ट एशिया के हवाले से मेरी नज़र में अमेरिका की पॉलिसी इंतहाई इन्हितात का शिकार है, बल्कि हवादिस का मैं कहूँगा कि शिकार हो चुकी है। अमेरिका अपने मोहरे इंतहाई बेखबरी में इधर से उधर इस वक्त चला रहा है। ये अभी जो सूरत हाल आपके सामने आई है उसकी असल वजह ये जो विरदक में एक हालिया ऑपरेशन हुआ था उसके अंदर अमेरिका ने हमारी मालूमात के मुताबिक वहाँ पे लोगों के साथ इंतहाई गैर इंसानी सलूक किया, जिसमें वो लोग भी शामिल थे जो कि किसी वक्त में अमेरिका के लिए हामिद करजई के साथ काम करते रहे। और उसके अलावा कुछ ऐसे लोग जो कि अमेरिका के हलीफ भी थे और करजई हुकूमत को कायम करने में उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया था, आज अमेरिका खुद उनके खिलाफ हो चुका है। और एक ये वजूहत भी थी, दूसरी है इसके तमाम एक देखिए मामला ये भी है कि ये जो अमेरिका यहाँ पर आया है, मैं पहले से भी कहता रहा हूँ कि अमेरिका ने अपने मफादात के लिए ये सारी चाल चली थी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पर। जंग आपको पता है वो तो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। अब अमेरिका ने इस तमाम सूरत हाल को अपने काबू में रखने के लिए तालिबान के अंदर भी दो ग्रुप बना दिए हैं, एक प्रो अमेरिकन तालिबान है, एक एंटी अमेरिकन तालिबान है। प्रो अमेरिकन तालिबान को अमेरिका जहां भी चाहे हालात को खराब करके अपने लिए जवाब पैदा कराता है कि ताकि वहां पर उसकी मौजूदगी रहे। अभी आप देखें ये असल में इतना वसी मौजू है, वक्त कम है, मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि अगर आप खुद अगर देखें अगर जायजा लें तो आपको पता होगा कि वही अलकायदा वही तालिबान जिसके खिलाफ अमेरिका ने इतना बड़ा हंगामा खड़ा किया, सारी दुनिया के अंदर दहशतगर्दी के नाम पे जंग शुरू की, आज उनको पसे पर्दा बैक चैनल्स के अंदर मेरी मालूमात के मुताबिक अमेरिका उनके साथ राबते कर रहा है और वो राबते बे इंतहा मजबूत हो रहे हैं। उन राबतों में ये तय किया जा रहा है कि अमेरिका ये चाहता है कि 2014 के बाद अमेरिका जब वहां से एक अंदाजे के मुताबिक एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक थोड़ा सा निकलेगा, मुकम्मल इंखला नहीं करेगा, लेकिन 2014 के बाद वो एक नया मिशन शुरू करेंगे नेटो वाले वहां पर। उस नए मिशन के अंदर ये होगा कि वो अमेरिका में कुछ मादनियात को तलाश, अमेरिका मादनियात तलाश करेगा, कुछ अफगानिस्तान के जो है मामलात उसके ऊपर कंट्रोल रखेगा, क्योंकि इसकी एक वजह ये भी है कि अफगानिस्तान के जो पड़ोस मुल्क है उज्बेकिस्तान है और ताजिकिस्तान है वगैरह, उनके भी आपको पता है कि मईशत इतनी कोई इतनी अच्छी नहीं है और ये हालात ऐसे हैं कि शायद उज्बेकिस्तान के अंदर अंदरूनी तौर पर हालात खराब हों। अगर उज्बेकिस्तान के अंदर हालात खराब होंगे तो फिर जो है अफगानिस्तान का जो है मामला बहुत अहम हो जाएगा। तो लिहाजा अमरीका ये अब चाह रहा है कि किसी तरीके से वहां पर उनकी मुकम्मल इनखलाबी ना हो, वो उनका वहां पर मौजूद रहे और ऐसे तालिबान जो कि अमेरिका के प्रो तालिबान है वो वहां पर हुकूमत कायम करें और उसके अंदर वो अब हामिद करजई को असल में चाहते हैं किनारा करना। यही वजह है जो बैक चैनल के अंदर जो मुझे मालूमात है उसमें ये भी पता लगा है कि उन लोगों के साथ अमेरिका ये बात कर रहा है कि जनाब अब हम आप के हमारे दोस्त हैं, हमसे जो भी गलतियां हुई जो भी मामलात हुए हैं हम इस मामलात को असर नौ तरतीब देते हैं और उन लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि वो वहां पे तमाम वही अलकायदा वही तमाम लोग दोबारा इकट्ठा होकर बशर उल असद के खिलाफ एक जंग करें और बाद में आने वाले तमाम जो मौजूदा जो सेटअप है जो अमेरिका का जो जंगजू ग्रुप है जिन्हें आप अलकायदा कह लें तालिबान कह लें जो कुछ भी जो आप नाम देना चाहें उनको फिर शाम के बाद फिर उनको ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया है। ये सारे एक मामलात हैं। अब अमेरिका ने चूंकि आइंदा नए महाज खोलने हैं लेकिन जंग नहीं करनी, लेकिन उन्होंने पेनिट्रेट करना है, तरीकेकार इन्होंने तब्दील कर दिया है, ये वो गलती नहीं करेंगे जो इन्होंने इराक वगैरह में या दूसरी जगह जंग की सूरत में की थी। तो ये असल में उन लोगों के साथ ताल्लुकात को इस्तवार कर रहे हैं, ताल्लुकात को इस्तवाल करके उनको शाम के और ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिसमें मैं समझता हूँ इनको नाकामी होगी क्योंकि सारी दुनिया अब इनकी चालों को समझ चुकी है। ये इस वक्त सूरत हाल है। तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका की जो पॉलिसी अफगानिस्तान में है वो निकल रहा नाकाम हो चुकी है। सिर्फ अमेरिका का इस वक्त एक यही एक सूरत हाल है कि किसी न किसी तरीके से अपने आप को वहां से बाइज्जत तौर पर इस तरह निकाले कि उसकी मौजूदगी भी बरकरार रहे और उसके मफाद की निगरानी करने वाली हुकूमत वहां पर मौजूद रहे। हामिद करजई साहब इस मामला को भांप चुके हैं। हामिद करजई साहब ने तारीख भी देखी है, पिनोशे का किरदार, दूसरे तमाम अमरीकी जो हिमायत याफ्ता हुक्मरान सारी दुनिया में आए हैं उनका हशर उनको पता है। लिहाजा हामिद करजई को पता है कि आइंदा अगर कभी इंतखाबात होते हैं या कभी इलेक्शन का मौका आता है मुस्तकबिल में हुकूमतें अफगानिस्तान में बनेंगी तो वह ला महाला अमरीका के मुखालिफ ही होंगी, हिमायत पे नहीं होंगी। तो लिहाजा हामिद करजई ने मुस्तकबिल के हालात को देखते हुए अभी से अपने लिए राह भी हमवार करनी शुरू कर दी है। ये तमाम अवामिल है जो कि इन तमाम तब्दीलियों के आपको की वजह से नजर आ रहे हैं।
जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, लाइन पे रहिएगा। कंदील अब्बास साहब, जनाब तालिबान और अमरीका के मुजाकिरात का सिलसिला तो बहुत पहले से जारी है, कतर में इसके लिए बाकायदा दफ्तर खोला गया, इसको अमरीका ने पोशीदा भी नहीं रखा था और सारी दुनिया को इसकी खबर थी कि यह प्रोसेस चल रहा है। अब अमरीका और तालिबान दोनों इस बात से इनकार कर रहे हैं कि उनके दरमियान मुजाकिरात का कोई सिलसिला है, क्यों इनकार कर रहे हैं?
देखिए अभी फिलहाल वो इसलिए मेरा ख्याल इनकार कर रहे हैं कि इस वक्त कुछ अरसे के लिए ये मुज़ाकरात मुअत्तल हुए हैं उनके दरमियान। जिस तरह की तवक्कुआत दोनों जानब की जा रही थी, यानी तालिबान को भी कुछ तवक्कुआत थी और कुछ अमेरिका को भी तवक्कुआत थी, वो फौरी तौर पर पूरी नहीं हो रही, इसलिए कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं दो ग्राउंड रियलिटीज़ आर डिफरेंट और उन ग्राउंड रियलिटीज़ की बेस पे अब फिलहाल वो एक तो पाकिस्तान में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं इसका इंतज़ार ज़रूर करेंगे कि नई गवर्नमेंट किस तरह की आती है, और दूसरा खुद अफगानिस्तान के अंदर जो नई सियासी जोड़ तोड़ हो रही है इसमें अपोजिशन जो पार्टियाँ उन्होंने उनकी 22 पार्टियों ने एक इतिहाद बना रखा है उसमें थोड़ा उनका देखना होगा उनको कि कैसा उनका स्टैंड आता है जो एंड गेम है अफगानिस्तान में इसके लिए। इसी तरह बाकी इस रीजन में एक स्ट्रेटजिक ट्राई एंगल भी एक पहले से बन चुकी है जिसमें अमेरिका का एक स्ट्रेटजिक एग्रीमेंट अफगानिस्तान से हुआ था, लेकिन उससे पहले अफगानिस्तान और इंडिया का एक स्ट्रेटजिक एग्रीमेंट हो चुका था, लेकिन उससे भी एक पहले अमेरिका का और इंडिया का भी स्ट्रेटजिक एग्रीमेंट हुआ था। अब इस ट्राई एंगल में फिलहाल अभी तक पाकिस्तान को इग्नोर रखा गया है और पाकिस्तान की डिमांड के बावजूद अभी तक अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ कोई ऐसा स्ट्रेटजिक एग्रीमेंट नहीं किया। तो ऐसी सारी सिचुएशन में कुछ डिजाइनिंग और किस्म की थी इस खत्ते के लिए, लेकिन जो आगे ग्राउंड रियलिटीज़ बन रही हैं जिस तरह की तवक्कोआत अमेरिका पाकिस्तान में कर रहा था, इस गवर्नमेंट जो हालिया गवर्नमेंट थी इसके खात्मे तक वो तवक्कोआत अमेरिका पाकिस्तान से पूरी नहीं कर पाया। अब मैं समझता हूँ कुछ डिले देना होगा कि आपने देखा है कि बिल्कुल इस गवर्नमेंट के आखिरी एक महीने में तालिबान की तरफ से भी ये ऑफर आई थी, पाकिस्तानी तालिबान की तरफ से अलबत्ता, कि हम गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात चाहते हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से भी इस तरह की बातें कुछ आई थी कि हम अफगानिस्तान में अपना किरदार अदा पॉजिटिव एक किरदार प्ले रोल प्ले कर सकते हैं। और उससे पहले हमने देखा कि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट के खिलाफ एक्टिविटीज़ होती थी, मुल्ला नज़ीर ग्रुप तालिबान का जो था उनका जो लीडर था मुल्ला नज़ीर को ड्रोन अटैक में मार दिया गया, ये सारी चीज़ें अगर एक जगह रख के देखें तो मैं समझता हूँ कि 2-3-4 महीने तक डिले करके एक तो वो एक नई हिकमत अमली बनाना चाहेंगे और ख़ास तौर पर इसमें पाकिस्तान में एक सियासी तब्दीली का इंतज़ार किया जाएगा।
जी बहुत बहुत शुक्रिया अंजान साहब। तालिबान और अमरीका के रिश्तों की नौइयत क्या है, उनके रिश्ते उनके रवाबित किस तरह के हैं?
देखिए तालिबान और अमेरिका ये तो बड़े पुराने दोस्त हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि जब सोवियत यूनियन की फौजें वो थीं और जमाने में और जब प्रेसिडेंट नजीबुल्ला वहां थे उस समय से और उसके बाद उनके इंतकाल के बाद जो पॉलिटिकल सिचुएशन पैदा हुई उस पॉलिटिकल सिचुएशन के पहले उस सियासी माहौल से पहले ही तालिबान के बहुत अच्छे रिश्ते थे पाकिस्तान वो अमेरिका से, तालिबान के रिश्ते पाकिस्तान से भी थे, और ओसामा बिन लादेन जब उसमें पूरा उनका जोर आया उस समय से लेकर के उन लोगों के रिश्ते बेहतर बने, और उस जमाने में तमाम हथियार डाले गए वहां पर, और आप तो जानते हैं गोला और बारूद और क्या कहते हैं बंदूक और राइफल की गोलियों के बाजार लगते थे, और उन बाजार से गांव के लोगों को दिया जाता था कि ले जाइए इन हथियारों से आप जो है AK-47 बांटी जाती थी, रॉकेट लॉन्चर्स जो है वो बांटे जाते थे ताकि वो सोवियत फौजों का जो है मुकाबला कर सके। और उनके जाने के बाद जिस तरह की सिचुएशन हुई कि स्वयं अमेरिका उन तमाम लोगों से तालिबान के उन लोगों से जिनको उन्होंने मदद की थी, जिनको उन्होंने वहां पर बड़े बड़े हथियार दिए थे, रॉकेट लॉन्चर्स दिए थे, जब नाटो घुस गया तो पैसा देकर के $100 में एक क्लाशिनेव राइफल लेने का काम उन्होंने शुरू किया था। आज तालिबान और अमेरिका के जो रिश्ते एक समय में खराब हो गए करजई साहब के जमाने में, पिछले 8 साल से जब करजई साहब को वहां बनाया, अब करजई साहब के सदारत में अमेरिका अपने मुफाद को पूरा होता नहीं देख रहा है, इसलिए नए चैनल्स उन्होंने खोले हैं, और उस नए चैनल्स को चाहे दुनिया देख रही है, और इसमें कौन सी नई बात है, दुनिया एक जमाने में ब्लू आइड बॉय थे ओसामा बिन लादेन, और फिर ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को चैलेंज करके वहां ले जाकर एबटाबाद के पास उन्होंने मारा, और पाकिस्तान की सरकार को ही पता नहीं लगा। तो ये सारा काम अमरीका ने किया, और पाकिस्तान की नेशनल सॉवरेंटी को टेकन फॉर ग्रांटेड एक तरीके से जो कहा जाए उसको किनारे रख करके उन्होंने जो काम किया, और पाकिस्तान के हुक्मरान उस पर बोल भी नहीं सके, और जिस तरीके से उनको दफन भी कर दिया गया, ये तो दुनिया ने देखा। आज तालिबान, मुल्ला उमर, प्रेसिडेंट ओबामा, नाटो, इन सबको एक साथ आप देख रहे हैं, क्योंकि एक बहुत जैसे ठीक मेरे किसी साथी ने कहा कि पाकिस्तान की के इलेक्शन के बाद अमेरिका अपनी स्ट्रैटेजी अफगानिस्तान में एक नए सिरे से बैठाने की कोशिश करेगा। किस तरह की ताकतें आती हैं पाकिस्तान के इलेक्शन में, क्या होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग का, क्या होगा पीपीपी का, नवाज शरीफ की क्या भूमिका होगी, ये सारे लोगों को ध्यान में रखकर और पाकिस्तान के अंदर लश्कर ए तैयबा और तालिबान ये सब किस तरह जाके खड़े होते हैं ये भी देखने के। इसीलिए पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स को समझने के लिए, उसमें अमरीकी दबदबा को और बरकरार रखने के लिए, अगर मान लीजिए पीपीपी हार जाती है तो फिर नई ताकतों के साथ एक नए तरीके की दोस्ती बनाने के लिए तालिबान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर उन्होंने एक नया चैनल खोला है और कल को अफगानिस्तान में अपनी पकड़ को सियासी तौर से बरकरार रखने के लिए थोड़ी सी फोर्सेस को बाहर नेटो को करने के बाद भी तालिबान की मंजूरी लेकर एक नई पॉलिटिक्स ओबामा के अंदर। ओबामा, मैंने पहले भी आपके एक प्रोग्राम में कहा था 4 साल पहले कि लोग समझते हैं कि ओबामा के आ जाने से तस्वीर बदल जाएगी। बराक हुसैन ओबामा और बराक ओबामा, ये लंबा सफर तय किया है उन्होंने। अमेरिका में प्रेसिडेंट बदल जाते हैं, पॉलिटिक्स नहीं बनती, बदलती। पेंटागन की पकड़ नहीं खत्म होती, सीआईए की धौंस और सीआईए का ऑपरेशन नहीं बंद होता, व्हाइट हाउस की पॉलिटिक्स दुनिया में दादागिरी की वो चलती रहती है। और याद रखिए, अमेरिका की सरकार, प्रेसिडेंट कोई हो, चाहे वो बुश हो, चाहे ओबामा हो, रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट हो, बुनियादी तौर से अमेरिका एक साम्राज्यवादी देश है और दुनिया में एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स उसकी सरकार को, अमेरिका को चलाती है। और दुनिया में अगर जंग नहीं होगी तो अमरीकी हथियार बिकेंगे नहीं, और अंग्रेजी अमरीकी हथियार बिकेंगे नहीं तो अमरीका में बेकारी पैदा होगी, बदउन्मानी पैदा होगी, इकोनॉमिक क्राइसिस होगा। इसलिए दुनिया की किसी न किसी खित्ते में अगर लड़ाई को बरकरार रखने की हर कोशिश पेंटागन की होती है, हर कोशिश एफबीआई की होती है, हर कोशिश सीआईए की होती है, और इसीलिए किसी न किसी को वो हवा बनाते थे। एक जमाने में अफगानिस्तान को में सोवियत फौजों को हवा बनाकर पूरे वेस्ट एशिया के मुल्कों को के लोगों को इस्तेमाल किया, और आज अफगानिस्तान में फंसने के बाद और तबाह करने के बाद वेस्ट एशिया को, आज ईरान को हवा बनाया जा रहा है, ईरान को डेविल बताया जा रहा है, ईरान को शैतान की तरह पेश करके पहले अफगानिस्तान के अंदर डॉक्टर नजीबुल्ला की सरकार जो थी वो शैतान थी, और आज ईरान की सरकार शैतान है। दुनिया के अंदर साम्राज्य की ताकतों का ये खेल है, और बुनियादी तौर से पूरे के पूरे वेस्ट एशिया में जो दौलत है जमीन के नीचे, चाहे वो तेल हो और चाहे वो जिंक हो, चाहे वो फॉस्फेट हो, चाहे वो जो कुछ भी हो, उसका इस्तेमाल करने के लिए वो ताकत में लगे हुए हैं। एक तरफ अफगानिस्तान में उनका खेल चल रहा है, दूसरी तरफ इसराइल में खेल चल रहा है। नेतन्याहू भी उनके दोस्त हैं, और करजाई को जब तक इस्तेमाल होना था हो गया, और इस्तेमाल करने के बाद अगर नहीं जरूरत होगी तो वो फेंक दिए जाएंगे, ये भी हम और आप अपनी आंखों के सामने देखेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया अंजान साहब। फैसल खान साहब, आप लाइन पर हैं जनाब?
जी 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 जी।
जनाब, इस हकीकत से तो सारी दुनिया वाकिफ है और उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि तालिबान को अमेरिका ही वजूद में लाया, अमेरिका की हिदायत और उसकी निगरानी में यह ग्रोह तश्कील दिया गया, अमेरिका की मदद से ही तालिबान ताकतवर बने, और अमेरिका की प्लानिंग से ही अफगानिस्तान के ऐवान इख्तदार तक पहुंचे, और इसके बाद फिर वो 9/11 का मशकूक वाकया और अलकायदा और तालिबान के खिलाफ अमेरिका का ये इकदाम। तो अमेरिका और तालिबान के दरमियान, अमेरिका और अलकायदा के दरमियान रवाबित तो हमेशा रहे हैं, बल्कि दोनों ग्रोह अमेरिका ने ही तश्कील दिए थे, और इन दोनों ग्रोहों ने अब तक जितने इकदाम किए हैं उन तमाम इकदाम से अमरीकी मफाद को की तकवियत हुई है, अमेरिका को ही फायदा पहुंचा है। तो क्या यह बात करीने कयास हो सकती है कि आज भी तालिबान और अमेरिका के दरमियान अमेरिकी साम्राज्य के मफादात के लिए खुफिया रवाबित मौजूद हों?
बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था कि मैं तो ये हमेशा कहता रहा हूं कि तालिबान का मौजूद ही अमेरिका है, अभी मेरे एक साथी ने बात की थी, गालिबन वो इस्लामाबाद से हैं, कंदीर साहब, उनकी बात को मैं बिल्कुल आगे बढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि आपको पता है कि मैं एक इंटरनेशनल मीडिएटर भी हूं और बिलावस्ता तौर पर आलमी मामलात के अंदर मैं कहीं ना कहीं मेरी मतलब शामिल, जिसे कहना चाहिए कि कहीं ना कहीं मैं शामिल जरूर होता हूं। तो ये मैं आपको बताता चलूं कि ये जो बात कह रहे हैं कंदील साहब, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि ये एक जो अभी जो मामला रुका है तालिबान का वो अमेरिका के साथ, वो इसीलिए रुका गया है कि वो पाकिस्तान के अंदर हालात को देखना चाहते हैं। और मैं भी वहां से कतर जाने वाला था और मुझसे पहले मौलाना फजल रहमान साहब कतर जा चुके थे। मौलाना फजल रहमान को कतर से वापस ही इजीली किया गया कि वहां पे उनको पता लगा था कि मौलाना फजल रहमान साहब जो है ये हकीकत उन तालिबान की नुमाइंदगी करते हैं जो अमेरिका के हलीफ तालिबान के मुखालिफ है। लिहाजा मौलाना फजल रहमान को वहां से वापस किया गया। मौलाना फजल रहमान साहब गए थे कतर में मुलाकात के लिए, गए थे क्योंकि वहां पे प्रो अमेरिकन तालिबान और अमेरिकन के दरमियान मामला सारे तय पाने थे। और यहां पे एक बात मैं बता दूं कि ये जो अभी कंदील अब्बास साहब ने कहा है कि जो पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी तालिबान है जिन्होंने अभी मुजाकरात को रोका है, उसकी असल वजह ये है कि ये मेरे इल्म में बात आई थी, मुझसे भी कहा गया था कि ये बात मुझे बाजाबता तौर पर बताई गई थी कि हम इस मामला को सिर्फ इसलिए ब्रेक थ्रू जिसमें आया है या सॉरी जिससे ब्रेक की गई है इस मुजाकरात को, उसकी असल वजह यह है कि वो पाकिस्तानी तालिबान ये समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ईरान का इन्फ्लुएंस ज्यादा बढ़ रहा है। और क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका पाकिस्तान ईरान की मुखालफत भी कर रहा है, लिहाजा उसी मुखालफत को के पस मंजर के अंदर पाकिस्तानी तालिबान को कहा गया था कि आप जो है पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म की फौरी जो अमन की बातचीत है, जो मामला है, उसको रोक दिया जाए। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं कि जो पाकिस्तानी तालिबान है या जो बाहर के तालिबान है, वो तमाम तालिबान के उनके तमाम डांडे कहीं ना कहीं से जाके मिलते वही प्रो तालिबान के साथ है और उनके डांडे जाके दोबारा वाशिंगटन के साथ मिलते हैं। तो ये जो बात आप कह रहे हैं, ये मैं अरसा गुज़िश्ता 5 साल से कह रहा हूं कि अमेरिका ने तालिबान और अलकायदा के खिलाफ जितनी भी कार्रवाई की या जो भी दहशतगर्दी की जंगें लड़ी हैं, उसमें तमाम के तमाम मफादात अमेरिका के मुकम्मल हुए और तमाम के तमाम नुकसान जो है मुस्लिम दुनिया के हुए और आज तक वो आप भुगत रहे। और ये मैं आपसे आज हकीकतन कह रहा हूं कि ये सूरतेहाल है, ऐसे मामला हो रहे हैं कि तमाम इन ग्रुपों को मुनज़्ज़म करके इनको बशरुल असद और बाद में मुस्तकबिल में ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा।
जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। कंदील अब्बास सर, 2 मिनट का वक्त हमारे पास रह गया, 2 मिनट से कम। क्या आज भी अलकायदा और तालिबान की कार्रवाइयां अमरीकी मफाद के रास्ते में नहीं है?
देखिए, इससे पहले तो शायद हम अलकायदा और तालिबान के बारे में मुख्तलिफ राय रखते थे, लेकिन इस एक दहाई के दौरान मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका और दुनिया के हर मुल्क के लिए कुछ तालिबान गुड हैं और कुछ तालिबान बैड हैं। जो तालिबान का ग्रुप किसी मुल्क की हमायत करता है, उसकी सपोर्ट करता है, वो उनके लिए गुड हो जाता है और दूसरा बैड तालिबान का ग्रुप बन जाता है। अभी करजई साहब ने ये जो स्टेटमेंट दी थी कि हमें ये पता चला है कि अमेरिका और तालिबान मिलकर ऐसी साजिश कर रहे हैं कि वो अफगानिस्तान में जंग को तवील कर सकें, उन्होंने जो रेफरेंस दिया था, उन्होंने कहा था कि कुछ मुहिब वतन तालिबान ने मुझे ये बताया है। तो इसका मतलब है खुद करजई साहब के भी रबते हैं तालिबान के किसी ग्रुप से। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इन्फ्लुएंस हो सकता है अमेरिका का भी तालिबान के अंदर भी, अलकायदा के साथ भी। लेकिन दूसरी तरफ मैं एक और चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ अपने मोहतरम दोस्तों की, फैसल साहब और अनजान साहब की, कि जो बार बार वो कह रहे हैं कि ईरान के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है, ईरान को कोई खतरा, मैं बिल्कुल नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है। इसलिए कि अमेरिका की जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि जिन मुल्कों में नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं वहां तो वो जुरत करते हैं जाके कोई एक्शन करें, लेकिन पिछले 35 साल में हमने देखा कि ईरान के खिलाफ स्टेटमेंट जरूर देते हैं लेकिन कभी फौजी ताकत के इस्तेमाल की बात नहीं कर सके। इसलिए कि उन्हें पता है कि यहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और अगर ऐसे मुल्क में आते हैं वो तो वो गली कूचे में जंग होगी। वो यही तो करके इराक गए थे, अफगानिस्तान गए थे, वहां पर लोगों ने हुक्मरानों को तो हटा दिया लेकिन वहां पे अमेरिका को एक्सेप्ट नहीं किया। और ईरान में ना सिर्फ एक्सेप्ट नहीं करेंगे बल्कि अमेरिका को अगर आते तो गली कूचे में जंग करनी पड़ेगी।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कंदील अब्बास साहब। इसी के साथ हम फैसल खान साहब के भी शुक्रगुजार हैं और अनजान साहब के भी शुक्रगुजार हैं। प्रोग्राम के बारे में नाजरीन, हमें आपकी राय का भी इंतजार रहेगा। हमारा ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@ofsahatv.ir। अगले प्रोग्राम तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं। खुदा हाफिज़।